नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें दिल्ली मेट्रो की 18,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के दो नए गलियारों का शुभारंभ भी करेंगे। इनमें मजलिस पार्क और मौजपुर बाबरपुर के बीच 12 किलोमीटर लंबे पिंक लाइन गलियारा और दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच लगभग 10 किलोमीटर लंबा मेजेंटा लाइन गलियारा शामिल है। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो के चरण 5A के तहत 16 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले तीन नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये कॉरिडोर हैं आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एयरो सिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन GPRA पुनर्विकास योजना के तहत 15,200 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पुनर्विकास योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 9,350 से अधिक आधुनिक फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही कार्यालय के लिए लगभग 48 लाख वर्ग फुट स्थान भी सृजित होगा। भानु प्रताप सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने गणपति सहित माओवादी समूह की केंद्रीय समिति के सभी सदस्यों से समर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है। हैदराबाद में कल मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 130 नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ समर्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता देने के संबंध में जल्द ही निर्णय लेगी। नेपाल में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी संसदीय चुनाव में प्रचंड जीत की ओर अग्रसर है। रैपर से राजनेता बने 35 वर्षीय बालेंद्र बालेन नाम से लोकप्रिय हैं। उन्होंने 4 बार प्रधानमंत्री रहे श्री केपी शर्मा ओली को पराजित किया। पार्टी ने 77 सीट से जीत ली है। इनमें काठमांडू जिले की सभी 10 सीटें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के सफल संचालन के लिए नेपाल की जनता और सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी के रूप में भारत नेपाल की जनता और नई सरकार के साथ मिलकर शांति, प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध है। 11वां रायसीना डायलॉग कल नई दिल्ली में सम्पन्न हो गया। 3 दिन के इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूब उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे। संवाद में इस वर्ष का विषय था संस्कार, कथन, सामंजस्य, उन्नति। कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत का उत्थान दूसरों की गलतियों से नहीं बल्कि इसकी अपनी शक्ति से निर्धारित होगा। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर के देशों में भारत के विकास से लाभ होगा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक अन्य सत्र में कहा कि वैश्विक विकास वित्त पोषण नीति में सुधार की आवश्यकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 7 मार्च तक खाड़ी क्षेत्र से 52,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार पश्चिम एशिया और खाड़ी के घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय नागरिकों को दूतावास के परामर्शों का पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच ईरान में अमेरिका और इसराइल के हवाई हमले, मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष का आज नवा दिन है। ये संघर्ष अब खाड़ी के कई देशों में फैल गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल अपने सभी लक्ष्य प्राप्त करने तक ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस वर्ष का विषय है महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये महिला अधिकारों को मजबूत करने, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और स्त्री पुरुष समानता में तेजी लाने की भावना को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज और राष्ट्र की नींव हैं। अहमदाबाद में T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 6:30 से प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।